दस दिन बाद विश्वनाथ का केबिन। ऑफिस की इमारत हमेशा की तरह खड़ी थी, मजबूत, सधी हुई, शांत। लेकिन आज इस शांति में भी कुछ अजीब सा था। विश्वनाथ अपने केबिन में बैठा था, लैपटॉप खुला हुआ था, स्क्रीन पर एक लंबी सी फाइल थी, नंबर, डेडलाइन, नोट्स। उंगलियां कीबोर्ड पर चल रही थीं, पर दिमाग कहीं और था। हर क्लिक, हर टैप जैसे आदतन हो रहा था। वो खुद भी जानता था, अगर कोई अभी उससे पूछ ले कि वो क्या लिख रहा है, तो शायद वो ठीक से जवाब भी न दे पाए। उसने कुर्सी से पीठ टिकाई, हल्का सा सिर पीछे झुकाया। आंखें अब भी स्क्रीन पर थीं, पर असल में वो देख नहीं रहा था। यादें, पिछले 10 दिन उसकी आंखों के सामने किसी स्लो मोशन फिल्म की तरह चलने लगी। एक्सीडेंट के बाद का पहला दिन, अस्पताल की सफेद दीवारें, तेज रोशनी, बीप करती मशीनें, और हर थोड़ी देर में शामली का झुककर चेहरा उसके सामने आ जाना। दर्द तो नहीं है ना? आवाज धीमी थी, पर उसमें जो घबराहट थी वो सवाल से ज्यादा दुआ लगती थी। वो याद करता है कैसे उसने उस वक्त हल्का सा सिर हिलाया था, बस इसलिए कि वो ज्यादा परेशान ना हो। फिर हवेली लौटना, सीढ़ियां चढ़ते वक्त शामली का बिना कुछ कहे उसका हाथ थाम लेना, ना कोई दिखावा, ना कोई सवाल, बस एक सादा सा सहारा। रात में दवाइयों का टाइम, घड़ी से पहले ही याद आ जाना, ये ले लीजिए। खाना सामने रखकर खुद तब तक ना खाना जब तक वो 2 कौड़ ना ले ले। विश्वनाथ के होठों से एक धीमी सी सांस निकली। वो सब बहुत स्वाभाविक था, और शायद यही बात उसे सबसे ज्यादा उलझा रही थी। 20 साल की उम्र, इतनी कम उम्र में इतनी समझदारी, कोई शिकायत नहीं, कोई सवाल नहीं, कोई आप मेरे लिए क्या करते हैं वाला हिसाब किताब नहीं। उसे याद आया, एक रात वो बुखार में कांप रहा था, शरीर जैसे टूट रहा हो। आधी रात को शामली उठी थी, ठंडे पानी की पट्टियां हर थोड़ी देर में बदलना, नींद में भी उसका माथा छूकर देखना जैसे आदत हो। ऐसे मत देखिए, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा था, पत्नी हूं, ये तो मेरा काम है। उस वक्त उसने कुछ नहीं कहा था, शायद थकान थी, शायद दर्द, या शायद उसने कभी सोचा ही नहीं था कि उसे कुछ कहना चाहिए। अब सोचता था, शायद कहना चाहिए था। वो कुर्सी से आगे झुका, कोहनियां टेबल पर टिक गईं, हथेलियां आपस में जुड़ गईं। थैंक्स, शब्द होठों से निकला लेकिन अधूरा लगा। थैंक्स कहना इतना आसान था, पर किस बात के लिए? सिर्फ ख्याल रखने के लिए, या उस सब के लिए जो वो बिना कहे दे रही थी? अपना वक्त, अपनी नींद, अपना ध्यान, अपना अपनापन। उसने फोन उठाया, स्क्रीन अनलॉक की, गूगल खोला। पत्नी को थैंक्स कैसे करें? कुछ सेकंड में स्क्रीन भर गई। एक रोमांटिक सरप्राइज प्लान करें, ज्वेलरी गिफ्ट करें, वीकेंड गेटअवे बुक करें, एक प्यार भरा लेटर लिखें। विश्वनाथ ने भौहें से कोड़ ली। नहीं, ये सब बहुत ज्यादा था, और शायद बनावटी भी। उसने स्क्रॉल किया, कैंडल लाइट डिनर, महंगा परफ्यूम, डायमंड रिंग। फोन हाथ में लिए लिए ही वो कुछ सेकंड चुप रहा, फिर फोन टेबल पर रख दिया। उसकी आंखों के सामने शामली का चेहरा आ गया, सिंपल साड़ी, हल्की सी बिंदी, बिना ज्यादा गहनों के भी पूरा चेहरा भरा हुआ, और वो नजर जिसमें कभी कोई मांग नहीं होती थी। इसे ये सब पसंद भी आएगा? उसने खुद से सवाल किया। अचानक उसके दिमाग में एक सीधी सी बात आई, शॉपिंग, ना कोई सरप्राइज, ना अंदाजे, जो पसंद होगा वो खुद देख लेगी। विश्वनाथ के चेहरे पर हल्की सी राहत आई, जैसे किसी उलझन का सिरा मिल गया हो। हाँ, ये ठीक रहेगा। वो फोन उठाकर कैलेंडर देखने ही वाला था कि स्क्रीन पर कॉल चमक उठी, बिजनेस पार्टनर। उसने कॉल रिसीव किया। हाँ बोल, दूसरी तरफ से दोस्ताना बेफिक्र आवाज आई। यार आज मैं नहीं आ पाऊंगा। क्यों? विश्वनाथ ने स्वाभाविक सा पूछा। पत्नी और बच्चों के साथ पिकनिक पर जा रहा हूँ, बहुत दिन हो गए थे, तो संभाल लेना आज। एक पल को विश्वनाथ कुछ नहीं बोला, फिर कहा, समझदारी है, फैमिली को भी टाइम देना जरूरी है। फोन रखते ही वो कुर्सी पर पीछे टिक गया। पत्नी, बच्चे, पिकनिक, शब्दों का अजीब सा असर हुआ। उसने सोचा, उसकी फैमिली भी है, शामली और वो बाकी सब। कोई शोर नहीं, कोई जिद नहीं, कोई शिकायत नहीं, फिर भी हर दिन एक जिम्मेदारी। फोन टेबल पर रखा ही था कि दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। आइए। सेक्रेटरी अंदर आई, हाथ में फाइल थी। सर, 10 बजे वाली मीटिंग शिफ्ट होकर 11:30 की हो गई है, और दोपहर में क्लाइंट कॉल भी है। विश्वनाथ ने सिर हिलाया। ठीक है, वो बाहर चली गई। केबिन फिर से शांत हो गया। विश्वनाथ ने लैपटॉप की तरफ देखा। मीटिंग्स, कॉल्स, फाइलें, पूरा दिन बिजी। उसने हल्की मुस्कान के साथ खुद से कहा, कोई नहीं, आज नहीं तो कल। उंगलियां फिर से कीबोर्ड पर चलने लगी, लेकिन अब यादों में एक नई लाइन जुड़ चुकी थी। शामली को थैंक्स कहना है। कैसे, ये अभी तय नहीं था, पर पहली बार उसे यकीन था वो कहना जरूरी है, और शायद ये सिर्फ एक शब्द नहीं होगा। केबिन, कुछ देर बाद। केबिन की शांति एक बार फिर टूटी। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। आइए, विश्वनाथ ने बिना नजर उठाया दरवाजा खुला। अंदर आनंदी खड़ी थी, फैक्ट्री की नीली सलेटी ड्रेस में, बाल कसकर पीछे बंधे हुए, चेहरे पर वही सादा सी गंभीरता। हाथ में कोई फाइल नहीं थी, बस थोड़ी सी हिचक। सर, उसकी आवाज में हल्की सी घबराहट थी। विश्वनाथ ने अब नजर उठाई, उसे देखते ही पहचान लिया। हाँ आनंदी, बोलो। आनंदी ने एक पल रुककर सांस ली, फिर बोली, सर धन्यवाद कहने आई थी। विश्वनाथ ने कुर्सी पर सीधा बैठते हुए पूछा, धन्यवाद किस बात का? आनंदी की उंगलियां आपस में उलझ गईं। मेरे पति के मरने के बाद आपने मुझे काम दिया सर। वाक्य पूरा होते होते उसकी आवाज थोड़ी भर्रा गई, पर उसने खुद को संभाल लिया। अगर आप नहीं देते तो शायद, वो रुक गई। विश्वनाथ ने हाथ उठाकर उसे बीच में ही रोक दिया। कोई नहीं, उसकी आवाज शांत थी पर सख्ती भी थी, ये मेरा फर्ज था। आनंदी कुछ कहना चाहती थी पर शब्द जैसे अटक गए। विश्वनाथ ने आगे कहा, और वैसे भी तुम पहले भी धन्यवाद कह चुकी हो। उसने हल्की सी बौहें चढ़ाई, अब बस करो। आनंदी ने सिर झुका लिया। जी सर, उसके चेहरे पर कृतज्ञता अब भी थी, पर साथ ही थोड़ी सी झेप भी। विश्वनाथ ने घड़ी की तरफ देखा, फिर फाइल की ओर इशारा किया। जाओ, उसने कहा, काम करो, यही सबसे बड़ा धन्यवाद होता है। आनंदी ने धीरे से सिर हिलाया। जी सर, वो पलटी, दरवाजे की तरफ बढ़ी और बिना कोई आवाज किए बाहर चली गई। दरवाजा बंद हुआ, केबिन फिर से शांत। विश्वनाथ कुछ सेकंड उसी तरफ देखता रहा जहां अभी आनंदी खड़ी थी। उसके दिमाग में एक अजीब सा ख्याल आया, लोग धन्यवाद कहने के लिए शब्द चुनते हैं, और कुछ लोग बिना शब्दों के हर दिन अपना धन्यवाद काम में, जिम्मेदारी में और चुप्पी में छोड़ जाते हैं। उसने कुर्सी पर वापस टिकते हुए हल्की सांस ली। लैपटॉप की स्क्रीन अब साफ दिख रही थी, पर दिल में धन्यवाद का मतलब थोड़ा और गहरा हो चुका था।